शिविर में हम सभी शरीरस्थ आत्मा को सम्यक ज्ञान से संस्कारित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आत्मा और शरीर ये दोनों अनादि हैं। जन्म मरण जो होता है वह आत्मा का होता है या शरीर का होता है? शरीर का होता है अपन कहते हैं। आत्मा न हो तो अकेला शरीर तो होता नहीं, और शरीर अकेला हो आत्मा उसमें न हो तो अकेला शरीर भी मरण नहीं कर सकता, क्योंकि जन्म और मरण का सवाल किसी एक में नहीं होता। जन्म का अर्थ होता है शरीर से आत्मा का वियोग, शरीर से आत्मा का वियोग यह मरण है। जन्म का अर्थ होता है शरीर से आत्मा का संयोग। दोनों न हो न जन्म हो सकता है न मरण। कैसे होगा? दोनों साथ चाहिए, शरीर भी साथ चाहिए और आत्मा भी। आत्मा ही शरीर को पाने के लिए एक गति से दूसरे गति की ओर जाता है। जब जाता है तो वह शरीर को धारण करता है, तो जिस वक्त धारण कर रहा है उसी का नाम हम जन्म कहते हैं। अपन क्या समझते हैं? जन्म का अर्थ जीव जब दुनिया में आता है उसको जन्म कहते हैं। हमारा महाराज हैप्पी बर्थडे है आज, कहते हैं कि नहीं? लेकिन वो हैप्पी बर्थडे वस्तुतः नहीं है, वस्तुतः आपने जन्म लिया था 9 महीने पहले। 9 महीने के बाद हैप्पी बर्थडे कह करके आप अपना जन्मोत्सव मनाते हैं। जन्म उसका नाम, जीव एक गति को छोड़कर दूसरे गति में जाता है, जाता ही जन्म लेता है कि जन्म लेने के लिए 9 माह लगते हैं, जाते ही जन्म लेता है क्या 9 माह के बाद जन्म लेता है? हाँ, यही तो समझना है। जीव जाते ही जन्म लेता है या 9 माह बाद जन्म लेता है, और हैप्पी बर्थडे हम किसका मनाएं? 9 माह बाद का या 9 माह पहले का? बाद का मनाते हैं। लेकिन ये झूठा है। यानी दो बार जन्म लेते हैं क्या? 9 महीने पहले एक बार लेते होंगे और 9 माह के बाद एक बार और हमारा जन्म होता है। 9 महीने बाद तो हम दुनिया में आते हैं, जन्म तो 9 माह पहले होता है अपना। दुनिया में आने के उत्सव को आप मनाते हैं, इसको जन्म कहते हैं, ये जन्म है ही नहीं। जन्म तो जीव का तब हुआ है जब वह गर्भ में आया, और गर्भ में आने से पहले जिस गति में होता है उस गति से यहाँ तक आने के लिए उसको केवल 4 समय लगते हैं, 4 सेकंड, 4 समय। सेकंड भी बहुत बड़ा हो गया, 4 समय लगते हैं, इतनी स्पीड से आता है। शरीर रहित हो करके वह 4 समय तक ही रह सकता है। कोई भी शरीर, देव का शरीर, नारकी का शरीर, तिर्यंच का शरीर, मनुष्य का शरीर, शरीर रहित हुआ तो मरण हुआ, मरण की घटना घटी, और यहाँ से आत्मा ने छोड़ दिया उस स्थान को और सीधा पहुंच गया जहां पर जाना था। जाने के लिए रास्ते में 3 समय लगते हैं, 4थे समय में पहुंच जाता है। ज्यादा से ज्यादा 4 समय में सब कुछ काम हो जाता है। यहां था, मरण किया, ऐसा आया, मोड़ ले लिया, ऐसा गया, फिर मोड़ ले लिया, ऐसा हुआ, जाके जन्म ले लिया। 4 समय लगे, 4थे समय में जन्म हो जाता है। मार्ग 4 ही समय वाला है, उसमें मोड़ लेकर के जा रहा हो तो मोड़ 3 बनते हैं, 1, 2, 3, 1, 2, 3। समय 4 बनते हैं, मोड़ 3 बनते हैं। 3 समय के अंदर ले जा करके वह जन्म लेता है। जन्म लेने के पश्चात वह 9 माह तक मनुष्य गति की अपेक्षा से गर्भ में रहता है। गर्भ में 9 माह तक रहने के पश्चात फिर वह जन्म लेता है, कहते हैं। ये भी जन्म ही नाम पाता है, परंतु असली जन्म ये नहीं है। अपनी आयु को हम गिनते हैं, हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हैं। इंग्लिश में हाउ ओल्ड आर यू, कितने साल के हैं, ऐसा कितनी उम्र है ऐसा नहीं पूछते। आप कितने प्राचीन हैं, कितने ओल्ड हैं, ओल्ड है ने पुराना, आप कितने पुराने हैं, ऐसा पूछा जाता है क्या? ऐसा मराठी में पूछते हैं आप? क्या पूछते हैं? हाँ, तुम ची किती वय आहे, ऐसा पूछते हैं। तुमसे वय किती आहे, वय, तुम कितने पुराने हो, ऐसे पूछते हैं। उधर इंग्लैंड आदि में ऐसा पूछते हैं, तुम कितने पुराने हो, तो सामने वाला कहेगा तुम कितने नए हो। हम 9 माह पुराने होते हैं जब शरीर से बाहर आते हैं दुनिया में, शरीर पूर्ण करके गर्भ से हम 9 माह पुराने हैं। जिसने दुनिया, जो जीव दुनिया में आता है, उस जीव को पूछा जाए वही कितने हैं, क्या बताएगा वो? अभी अभी जन्मा है, 9 महीने कहना पड़ेगा ना? नहीं, यदि बताना आ जाए तो उसके लिए क्या कहेंगे, मैं 1 साल का हूँ, ये भी नहीं कह सकेगा, और अभी अभी जन्मा है तो फिर वो 2 सेकंड का हूँ ऐसा कहेगा? 9 ही कहना पड़ेगा। हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने पुराने हो, तो 9 महीने पुराना हूँ यही कहना पड़ेगा। तो असली हमारा जन्म तो 9 माह पहले हो चुका होता है, लेकिन व्यवहार में हम गिनते हैं 9 माह के बाद जो जन्म होता है वहां से गिनना शुरू करते हैं। शास्त्र में जीव को मोक्ष जाने की चर्चा, यानी कम से कम उम्र में, कितनी उम्र में जीव मोक्ष जाता है, ये जब चर्चा चलती है तो दुनिया में आने के बाद उसकी जो वो है, उम्र है, वहाँ से नहीं चलती। जब से वो गर्भ में आया है वहाँ से चर्चा होती है, क्योंकि असली जन्म तो वही है, वही वहाँ से शुरू होता है। तो कहते हैं 8 साल अंतर मुहूर्त बाद जीव को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र धारण करके मोक्ष जाने की क्षमता आती है, इतनी समझदारी आ जाती है। कितने समय बाद? 8 साल अंतर मुहूर्त के उपरांत जीव मोक्ष जा सकता है, उसमें गर्भकाल को भी शामिल कर लेना चाहिए। तो हाँ, 8 साल अंतर मुहूर्त, ऊपर का अंतर मुहूर्त और लग जाता है, 8 साल अंतर मुहूर्त बाद जीव मोक्ष जाता है, जा सकता है, इतनी क्षमता आ जाती है उसमें। तो उसमें गर्भकाल भी शामिल है, जिस समय वह दुनिया में आता है उस डेट से नहीं है वो। मतलब असली जन्म हमारा वही कहलाया जो 9 माह पहले आए थे। हाँ, जन्मोत्सव हम इसलिए मनाते हैं, शरीर बाहर आए बिना किसका उत्सव मनाए हम? हम ही बाहर नहीं आए और सबके बीच में उत्सव कैसे मनाए? जिस समय जन्म होता है ना, उस समय जन्मोत्सव हम मना रहे हैं, जन्मोत्सव उस दिन का थोड़ी मना रहे हैं, हम 9 माह पहले जब आए थे उसका मना रहे हैं। तीर्थंकर भगवंतों का जन्म होता है, होता है कि नहीं होता? होता है, 9 माह बाद ही होता है ना। महापुरुष हो या सामान्य जीव हो, मनुष्य गति में मनुष्य मात्र 9 महीने के बाद ही जन्म लेता है। तीर्थंकरों का जन्मोत्सव भी 9 माह बाद ही देव लोग मनाते हैं, जन्मोत्सव मना रहे हैं, उस दिन का मना रहे हैं या 9 माह पहले का? जन्म का दिवस तो मनाया जा रहा है, लेकिन उसी दिन का जन्मोत्सव मनाते हैं कि 9 माह पहले आया था उसका मना रहे हैं? हाँ, उसी का मनाया जाता है। तीर्थंकर आज जन्मे इसका नहीं मनाया जाता, 9 माह पहले, वो जगत उद्धारक परमात्मा 9 माह पहले गर्भ में आए थे और वह आज दुनिया में आ गया, उनका जन्म सफल हो, वो सबको सन्मार्ग बताएं, अपना कल्याण करे, दुनिया का कल्याण करे, हर्ष के साथ सभी देवता मिल करके जन्मोत्सव मनाते हैं, 9 माह के बाद मना रहे हैं, लेकिन उसका जन्म तो 9 माह पहले हुआ था ना, तो उसका, उसको कोई पूछता है जन्मे तीर्थंकर को, हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 9 मंथ ओल्ड। ये कहना पड़ेगा ना, क्या आज ही जन्मा, ऐसा कहेंगे? नहीं। तो जन्म, असली जन्म तो वही होता है। मनुष्य गति में जन्म लेना मनुष्य का भाग्य माना जाता है कि दुर्भाग्य? भाग्य माना जाता है। तो 9 माह के बाद मनुष्य गति में जन्मा क्या 9 माह पहले? 9 माह पहले। तो असली जन्म का दिन तो वो है, उसको आप लोग मना ही नहीं पाते। मना सकता है कोई? नहीं मना सकता। 9 महीने पहले गर्भ में आए थे, सभी लोग आए थे ना, अपन अपन सभी आए थे। तो उस तारीख को हम ध्यान रख सकते हैं? आत्मा कब 9 महीने पहले किस दिन और किस वक्त और किस सेकंड में किस मिनट में आया था, ये डेट किसी के पास हो सकता है? बस यही डेट हम लोगों के पास नहीं हो सकता है, इसलिए हम दुनिया के, दुनिया में आने के डेट को मनाते हैं। वो पता नहीं है तो क्या करे, किस दिन, कौन सा मुहूर्त, किस तारीख, किस सेकंड, कौन सा मिनट, कौन सा योग, कौन सी तिथि, कौन सा वार, बता सकते? नहीं बता सकते। इसलिए हम जन्म लेने के पश्चात, यानी शरीर से जन्म बाहर आने के पश्चात हम उसको मनाते। परंतु यह जन्म दिवस असली दिवस नहीं माना जाता। जिस दिन हम आए थे वह तारीख हमें पता नहीं, वह वार पता नहीं, वह दिन पता नहीं, तो हम किसका मनाएं, किसका मनाएं? इसलिए उसको नहीं मनाते, इसको मनाते, ये हो जाता है। प्रत्येक प्राणी संसार में जन्म मरण कर रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। जन्म के पश्चात मरण भी होता है और मरण के पश्चात जन्म भी होता है। कई लोगों को ये विश्वास नहीं आत्मा का पुनर्जन्म होता है या नहीं। जनरल लोगों को, सामान्य लोगों को, बहुत ही सामान्य होते हैं वो, और उतना सामान्य होने के पश्चात भी वो इसमें विश्वास नहीं करते कि जीव का पुनर्जन्म होता है, होता है, ऐसा विश्वास नहीं करते। ऐसे दुनिया में कई मत हैं जो जीव के मरण के पश्चात जन्म नहीं मानते, किंतु जैन धर्म में, जैन मत के अनुसार, तीर्थंकरों की वाणी के अनुसार मरण के पश्चात जन्म है या नहीं, तीर्थंकर क्या कहते हैं, होता है कि नहीं? होता है, मरण के पश्चात जन्म होता है। किसने कहा? तीर्थंकर भगवंतों ने कहा। क्या अपन लोगों ने जजमेंट ले लिया कि हमारा मरण भी होता है, जन्म भी होता है? नहीं, क्योंकि जन्म के समय भी हमको मालूम नहीं था कि हम जन्म ले रहे हैं, और मरण के समय भी ये मालूम था कि हम मरण कर रहे हैं, परंतु जिस वक्त मरण करके यहाँ से चले गए, उसको क्या ध्यान रख करके आए हैं? वो डेट भी हमारे लिए ध्यान में नहीं है। तो जन्म मरण अवश्य होता है, और मरण करते समय, जन्म लेते समय जीव को स्मरण में नहीं रहता, मरण स्मरण में नहीं रहता, इसलिए समस्या हो जाती है कि जन्म है क्या नहीं, मरण है क्या नहीं, क्या पता। तो फिर अनुमान करना शुरू कर देता है, मरण के पश्चात तो जीव का विनाश होता होगा और शरीर भी बिखर जाता होगा। शरीर का बिखरना हुआ कि आत्मा के, आत्मा का भी विनाश हो गया। जब तक शरीर है तब तक जीव है, जब शरीर नष्ट हो जाता है तो जीव भी नष्ट हो जाता। ऐसा जजमेंट लेकर के पुनर्जन्म को इस प्रकार से नहीं है कहने के रूप में लोग मान्यता दे देते हैं, और वह मान्यता है तो कुतर्क है, वो सुतर्क नहीं है, लेकिन वह मान्यता क्या हो गई, गलत हो गई ना, गलत हो गई। हम नष्ट होंगे तो दुनिया के सारे जीव नष्ट हो जाएंगे, शरीरधारी हैं, शरीरधारी हैं ये तो हम मानते हैं, परंतु शरीर का वियोग होने पर आत्मा का भी नष्ट होना होता है ये मानेंगे तो जीव नश्वर समझना पड़ेगा। जीव नश्वर है, शाश्वत नहीं। और उत्पत्ति भी कैसे मानते हैं, पुद्गल परमाणुओं को जीव आते ही गर्भ में ग्रहण कर लेता है, ग्रहण कर लेता है तो उसी का नाम जीव। यानी इन पांचों प्रकार के पुद्गलों का पंच क्या बोलते हैं उसको, पंच तत्व मिलने पर जीव की उत्पत्ति होती है। पंच तत्व कौन, पंच तत्व ये चेतन तत्व हैं कि अचेतन तत्व हैं, अचेतन हैं। अचेतन पांच तत्वों को मिलाने पर अगर जीव की उत्पत्ति हो गई तो ऐसे नए नए जीव उत्पन्न होते ही रहेंगे। पांच तत्व कहाँ नहीं है, सब जगह है, और पांच तत्व मिल गए वहां एक जीव उत्पन्न होगा, इधर एक पांच तत्व मिल गए वहां भी एक उत्पन्न हो गया। तो जीव की उत्पत्ति पुद्गल से माना, पुद्गल द्रव्य ने जीव को जन्म दिया यानी उत्पन्न किया, पहला था ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं था। पंच तत्वों के कारण से एक चेतन नामक छठा जीव तत्व की उपलब्धि हो गई, ऐसा मानना पड़ेगा। तो ऐसा संभव है क्या, नहीं है। आपके घर में पांच तत्व थे और उसमें से जीव उत्पन्न हो गए, ऐसा कभी देखा है किसी जंगल में कहीं घूमते हुए पांच तत्वों के मिलने से जीव की उत्पत्ति हो गई, ऐसा देखा है, नहीं देखा। अगर ऐसा ही होता तो तीर्थंकर भगवान पांच तत्वों का उपदेश देते कि पांच तत्व ऐसे मिलते हैं और पांच तत्वों के मिलने से छठे जीव तत्वों की उपलब्धि हो जाती है, उत्पत्ति हो जाती है। तो ऐसा थोड़ी होता है, जीव अलग है, पुद्गल अलग है, स्वतंत्र द्रव्य हैं क्या, ये एक ही हैं, ये स्वतंत्र द्रव्य हैं, एक नहीं। जीव स्वतंत्र हैं, अनादि है, पुद्गल भी स्वतंत्र है, अनादि है। ये किसने समझाया, ये तीर्थंकर भगवंतों ने समझाया। कब समझाया, जन्म लेते ही समझाया, या मुनि दीक्षा लेने के बाद समझाया, या केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद समझाया, कब समझाया, केवल ज्ञान, उससे पहले क्यों नहीं समझाया। केवल ज्ञान उत्पन्न होने से पहले भी मुनि अवस्था थी, उस समय क्यों नहीं समझाया। सोचा कभी उस समय क्यों नहीं समझाते हो, आप लोग निवेदन करते हैं मुनि महाराज से, तो मुनि महाराज तो केवल ज्ञानी है ही नहीं, उपदेश देना शुरू कर देते हैं वो। हम बोल रहे हैं सामान्य हैं, पर तीर्थंकर भगवान मुनि दीक्षा लेने के बाद एक दिन नहीं बोलते, और उनका अखंड संकल्प रहता है कि जब तक हमको केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक भव्य जीवों को उपदेश नहीं देंगे, किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं करेंगे, उपदेश देंगे, बातचीत नहीं करेंगे। महावीर भगवान दीक्षा लेने के बाद आप लोगों को पता है कितने साल मौन रहे, 12 साल मौन रहे। और आदिनाथ भगवान, वो भी तो तीर्थंकर थे ना, कितने साल मौन रहे, कितने साल, 1000 साल अखंड मौन निभाए। एक हजार साल मौन, और अपन 1 घंटे के लिए मौन नहीं रह सकते, भूल जाते हैं और किसी से बोल पड़ते हैं। 1000 साल मौन रहे, कितनी बड़ी बात है, कैसी साधना। और हजार साल तक क्या किया, कुछ भी नहीं किया तपस्या के अलावा। आत्मा का चिंतन, तत्व चिंतन, पुद्गल द्रव्य क्या है, जीव द्रव्य क्या है, धर्म द्रव्य क्या है, अधर्म द्रव्य क्या है, आकाश द्रव्य क्या है, काल द्रव्य क्या है, इन्हीं सात तत्वों का चिंतन, तत्वों का चिंतन ही, इन द्रव्यों का चिंतन, चेतन अचेतन द्रव्य यही तत्व हैं, इनका ही वो चिंतन करते रहे। इसके अलावा कुछ भी नहीं किया और हजार साल लगे चिंतन करते करते, हजार साल व्यतीत हो गए। एक समय ऐसा आया कि उनको इस चिंतन में आत्मा के परिणाम अत्यंत उज्ज्वल हो गए और उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। महावीर भगवान भी यही करते हैं, 12 साल तक अखंड मौन रहकर चिंतन करते चले गए। एक समय ऐसे आया आत्मा के परिणाम अत्यंत उज्ज्वल होने पर उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। केवल ज्ञान जिस दिन होता है उसी दिन तीर्थंकर भगवान उपदेश देते हैं, परंतु महावीर भगवान एक ही भगवान ऐसे हैं, केवल ज्ञान उत्पन्न होने के पश्चात 66 दिन तक भव्य जीवों को उपदेश नहीं दिया। क्या कारण बना? हाँ, ये प्रवचन तो हो गए हैं स्पेशल। वहां गणधर परमिष्टि नहीं थे, उनके गूढ़ दिव्य ध्वनि को, उनकी भाषा को, उनके उपदेश को सूक्ष्म सोचकर ग्रहण करने वाले, सूत्र की रचना करने वाले गणधर परमिष्टि नहीं थे। उनके उपदेश को सुनने की और समझने की पात्रता, द्वादश्यांग के रूप में उसको संग्रहित करने की पात्रता किसी में नहीं थी, इसलिए बोल नहीं रहे थे। वो जिस प्रकार पानी बरसता है तो किधर से बरसता है? आकाश से बरसता है। आकाश के माध्यम से पानी बरसता है, तो आकाश में क्या होने पर पानी बरसता है? मेघ होने पर पानी बरसता है। आकाश ही बरस रहा है, आकाश में से ही पानी गिरता है, परंतु क्या होने पर पानी गिरता है? मेघ होने पर। आकाश अनंत है, विराट है, उसी प्रकार भगवान ज्ञान की अपेक्षा से अनंत आकाश के समान विराट ज्ञान के धारी हैं, पर उस विराट ज्ञान के भीतर जो बरसने की शक्ति है उसके लिए बादल चाहिए ना। तो गंधर्व परमिष्टि रूपी बादल वहां नहीं था, और वो जब तक नहीं रहते तब तक बरसना संभव नहीं है। अपन धर्म को समझने के लिए बैठे हैं। धर्म क्या है? इस पुस्तक का पहला पाठ है धर्म। धर्म आत्मधर्म, धर्म की उत्पत्ति ही आत्मा से होती है, इसलिए आत्मा को छोड़कर धर्म होता नहीं। न मोक्ष आत्मा को छोड़कर के होता है, न धर्म आत्मा को छोड़कर के होता है। धर्म और मोक्ष, इनकी उत्पत्ति का स्थान केवल आत्मा ही है। इतना समझ में आ गया? धर्म कहाँ है? आत्मा में। आत्मा कहाँ है? आत्मा धर्म में है। आत्मा शरीर में है, और शरीर कहाँ है? शरीर आत्मा में है, यानी घुस एक दूसरे से घुसे हुए। आत्मा तो पुसद में है ना, पुसद में जन्मा है और पुसद में है, और शरीर क्या दिल्ली में? आत्मा पुसद में है, शरीर भी पुसद में है, लेकिन शरीर आधार है और आत्मा आदि है। शरीर के भीतर आत्मा रहता है या आत्मा के भीतर शरीर है? शरीर के भीतर आत्मा है। गाड़ी के भीतर ड्राइवर रहता है या ड्राइवर के भीतर ही गाड़ी होती है? गाड़ी के भीतर ड्राइवर रहता है, और गाड़ी को कौन चलाता है? ड्राइवर चलाता है, और ये अपनी गाड़ी है। पुरानी गाड़ी हम छोड़ करके आए हैं, नई गाड़ी को प्राप्त कर चुके हैं। शरीर गाड़ी के समान है, गाड़ी है अपनी, और आत्मा ड्राइवर के समान है। आप यहाँ से उठ करके जाते हैं, आते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो गाड़ी सहित जाते हैं कि गाड़ी को यहीं छोड़ करके जाते हैं? अगर गाड़ी से उतर गए तो डेथ हो गया, समझना। जिस दिन हम गाड़ी से उतरते हैं उसका नाम मरण, और जिस दिन नई गाड़ी में चढ़ते हैं उसका नाम जन्म है। इतनी बात समझ में आती है? आती है। यही तथ्य समझने के उपरांत धर्म अपने जीवन में आ सकता है, नहीं तो धर्म आने वाला नहीं। शरीर और आत्मा को एक समझने वाला जीव सम्यक दृष्टि नहीं कहलाता। शरीर भिन्न तत्व है, शरीर आत्मा भिन्न तत्व है, इस प्रकार भिन्न भिन्न समझने वाला और आत्मा की साधना करने वाले जीव को और शरीर से मोह छोड़ने वाले जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। शरीर अजीव तत्व है और आत्मा जीव तत्व है, इतना तो पता रहना चाहिए। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर क्योंकि आत्मा नहीं है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं कौन हूं? आत्मा जीव हूं। और शरीर अचेतन तत्व है, शरीर मेरी गाड़ी है, ये कहो चलेगा? शरीर मेरी गाड़ी है और मैं आत्मा हूं, ड्राइवर के समान हूं। जब भी मैं चलता हूं, मैं नहीं चलता, मैं चलाता हुआ आगे बढ़ता हूं। किसको चलाता हुआ? शरीर को चलाता हुआ आगे बढ़ता हूं। ऐसा कभी विचार किया है आप लोगों ने? कभी नहीं किया। शरीर के चलने से मैं चल रहा हूं कहते थे कि नहीं? कहां जा रहे हो? मैं घर जा रहा हूं। कैसे जा रहे हो? कुछ उत्तर मालूम नहीं। बैठ के जा रहे हो या चलते हुए जा रहे हो? गाड़ी में तो ड्राइवर बैठता है लेकिन हैंडल करता है गाड़ी का, गाड़ी का हैंडल करते हुए जाता है। गाड़ी चलती है, स्वयं बैठा रहता है, लेकिन हाथ तो हिल रहे हैं ना गाड़ी को चलाने के लिए। अगर ड्राइवर अंदर ना हो तो क्या गाड़ी चल सकती है? नहीं चल सकती। हाथ भी हिलाना पड़ेगा, रास्ता को भी देखना पड़ेगा। गाड़ी को न दिखता है न सुनाई देता है। गाड़ी को तो चलाने से, चलना तो वह कार्य करता, चलने का कार्य करता है। मैं चल रहा हूं इसकी अनुभूति गाड़ी को नहीं होती। गाड़ी चल रही है और मैं गाड़ी चला रहा हूं, इसकी अनुभूति ड्राइवर को होगी कि गाड़ी को होगी? तो वो जीवन तत्व है, जीव तत्व है। जिसमें जीवन होता है उसको जीव कहते हैं। इसी भेद को समझ करके हम सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकते हैं, और सम्यक्त्व हमारा प्रथम धर्म है, मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है। देखो ये समझ में आता है ना कि हम अलग हैं और शरीर अलग है। वस्तुतः देखें सभी जीवों को मालूम है कि मैं मरने वाला हूँ, शरीर यहीं छूटने वाला है, ये तीन चार बातें मालूम हैं, परंतु इसके बाद का खोल जा करके नहीं सोचा। हम जन्मते हैं और मरण करते हैं, इतना तो मालूम है, इसके बाद का हमने चिंतन भी नहीं किया और विचार भी नहीं किया। कभी ऐसा विचार किया कि हम चलते समय ये शरीर गाड़ी के समान है और मैं ड्राइवर हूँ, मैं शरीर को चला रहा हूँ, ऐसा कभी विचार किया? नहीं किया। ऐसा क्यों नहीं किया? टाइम नहीं मिला क्या? वो समझ में नहीं आता। यही जो समझ में हमको नहीं आता था ना, जिसको हम विचार नहीं करते थे, उसी बात को विचार करने के लिए तीर्थंकर भगवंतों ने तत्व को समझाया है। तत्व कितने होते हैं मालूम है? सात होते हैं, सात होते हैं। जरा सात दे देना, कौन कौन से होते हैं पूछ रहा हूँ, सात दे देना। सात तत्व हैं, जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव तत्व, बंध तत्व, संवर तत्व, निर्जरा तत्व, मोक्ष तत्व। ये सात तत्व तो मालूम हैं, ये बहुत अच्छा है, कम से कम इतना तो मालूम है। इन पर विचार जरूर नहीं किया होगा, पर नाम तो मालूम है अपने को। अब नाम मालूम है विशेष बात है, और इसी पर से हम आगे बढ़ सकते हैं। नाम ही मालूम ना हो तो कैसे आगे बढ़ेंगे? तत्वों के नाम ही मालूम नहीं है तो तत्वों पर चिंतन भी कैसे करेंगे? इसलिए बहुत ध्यान दे करके अब जो आपका जीवन नया बनेगा, आज पहला दिन है, चार महीने में आपकी काया पलटने वाली है। आप आज कुछ हैं और कल के दिन और कुछ होने वाले हैं, ऐसा होने वाला है कि नहीं? क्या ऐसा ही रहेंगे? शरीर तो ऐसा ही रहेगा, वो भी बदलेगा। आप तो 4 मंथ ओल्ड हो जाएंगे, शरीर भी बदलेगा, आत्मा भी बदलेगा। आत्मा बदल ही रहा है, लेकिन एक बदलाव जो अपने जीवन में आता है, जिसको कहते हैं धार्मिक बदलाव, आपको अवश्य अपने जीवन में देखने को मिलेगा। 4 महीने बाद एक आनंद की अनुभूति होना शुरू होगा, एक आनंद की अनुभूति होगी आपके जीवन में 4 महीने के बाद। वो किस प्रकार की होगी वो आप उसी समय कह सकते हैं। वो किस कारण से होगी अनुभूति? हाँ, जो हमने आज तक विचार नहीं किया था, सुना नहीं था, उस ओर ध्यान नहीं दिया था, उस ओर चलने का प्रयास नहीं किया था, और केवल सांसारिक कार्यों में ही उलझ करके उन्हीं का चिंतन मंथन होता था। सुबह हो गया, उठ गए, भांडी बर्तन खटपड़ खटपड़ होने लगे, धोया, साफ किया, खाना बनाया, खाया, भागे काम के लिए, फिर थक करके आए, शाम को लेटे, जल्दी नींद लगी और 8 बजे ही खुली। ये विषय सुना कब, समझा कब, विचार कब किया? हमको अवसर ही नहीं मिला ना। तो जीव ऐसा संसार में उलझ जाता है अपने कामों में, स्वयं के चिंतन में उलझता नहीं है, वो संसार के कार्यों में उलझ करके सब कुछ भूल जाता है। किंतु तीर्थंकर भगवान कहते हैं, आप मनुष्य गति में जन्म लेने के पश्चात यदि आत्म तत्व का और अजीव तत्व का चिंतन नहीं किया तो आपने कुछ नहीं किया। और ऐसा किसी ने कुछ नहीं किया है, कुछ करता नहीं है, तो समझ लेना चाहिए वह सम्यक दृष्टि नहीं है। आर्यखंड में जन्म लेने के इस जन्म को सार्थक वह नहीं कर पाया। आर्यखंड का यह जन्म सार्थक होना क्या निरर्थक होना? सार्थक होना। तो सार्थक धर्म से होगा क्या सांसारिक जीवन जीकर मरण से होगा? धर्म से होगा। तत्व ज्ञान से होगा। थोड़ा चिंतन भी करने का आदत डालना चाहिए, संसार के कार्यों को थोड़ा गौण करके थोड़ा तत्व चिंतन भी करना चाहिए कि नहीं? रोज करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। भगवान ने दो धर्म का उपदेश दिया, मुनि धर्म, श्रावक धर्म। इन दोनों को धर्म तत्व का चिंतन करने के लिए कहा है कि चिंतन के बिना भी धर्म होगा ऐसा कहा? चिंतन करने के लिए कहा है। हमको प्रयास करना है, रोज थोड़ा सामायिक करेंगे। सामायिक करते हो आप लोग? सामायिक नहीं करते होंगे, माला जरूर फेरते होंगे, और माला फेरते समय भी प्रतीक्षा रहती होगी, माला खत्म हुई क्या नहीं, होती हुई क्या नहीं, जल्दी जाना है। माला फेरते रहते हैं और मन जो है संसार में ही लगा रहता है। कितनी बार उधर होकर के आता है माला फेरते समय? कई बार होकर के आता है। इसका अर्थ ये है पूरा ध्यान उधर है, माला तो केवल हाथ से उपचार से फिर रही, व्यवहार से, वस्तुतः वो सार्थक नहीं हो रहा है। देखो मन कितना संस्कारित हो गया है, संसार में पंचेंद्रिय विषयों को चिंतन करने के लिए कितना संस्कारित हो गया है। घर घर घर, परिग्रह परिग्रह परिग्रह, घर में गए तो मंदिर याद आता है, ऐसा देखो ये कैसा है। घर में गए तो मंदिर अच्छा लगता है और मंदिर याद आने लगता है। संसार का कार्य कर रहे हैं लेकिन मंदिर का टाइम हो गया, मंदिर का टाइम, मंदिर की तरफ दौड़ता है। मंदिर में आ गए, माला फेरने लगे तो घर की तरफ दौड़ता है। मन चंचल है, टिकता ही नहीं। इतना चंचल क्यों होता है? संस्कार के कारण। कौन सा संस्कार डाला है हमने आत्मा के ऊपर? संसार के, यानी सूर्योदय हो गया तो सूर्यास्त तक कहाँ जाना, क्या करना, कौन कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, यही चिंतन बाहर का। बहिरात्मा बाहर के संसार का ही चिंतन करता है और अंतरात्मा अंदर का ख्याल रख करके बाहर का चिंतन करता है। अंदर का क्या है और बाहर का क्या है ये अंतरात्मा को ही मालूम रहता है, बहिरात्मा को ये मालूम नहीं रहता। अभी 15 मिनट बचा है लेकिन लग रहा होगा कि हुआ तो नहीं टाइम, नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा तो मन तो आज पहले दिन ही समझ गया हो। अब ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं रहेगी, मन समझ रहा है कि यही अच्छा है, धर्म ही अच्छा है, धर्म में ही शांति है, धर्म में ही सुख है, धर्म के माध्यम से ही मेरा उद्धार होने वाला है, ये जीव समझता है। लेकिन धर्म को करने में प्रमाद करता है। करता है कि नहीं? प्रमाद करता है। ये प्रमाद कुछ भी करने नहीं देता। जो प्रमादी नहीं होता वही इस संसार से जल्दी मुक्त होता है। प्रमादी जीव सब कुछ निमित्त मिलने पर भी कुछ नहीं कर पाता, ऐसा होता है। तो अपन को क्या करना है, अपने जीवन को थोड़ा सा बदलने के लिए प्रयास करना है। जीवन में बदलाव आवश्यक है। क्या जैसे हैं वैसे ही रहोगे? महाराज हम पहले ऐसे ही थे और ऐसा ही रहेंगे, क्योंकि पहला पासून ये जीवन जीने की हमारी जो शैली है, जो पद्धति है, ये हमारी बहुत पुरानी है और इसको हम कैसे छोड़ सकते? आदत पड़ी हुई है, हम यहीं रहेंगे, उसको ही स्वीकार करके रहने का प्रयास करोगे? क्या बदलाव लाने का प्रयास करोगे? जो नयापन, आनंद, सुख जिसमें है, शांति जिसमें है, सुख और शांति जिसमें है वहाँ जाने का प्रयास करोगे, या जिसमें सुख मिला ही नहीं, दुख ही दुख मिला है, अशांति रही है, कुछ भी उन्नति नहीं हुई है आत्मा की तरफ से, उस रास्ते को ही जीवन जियोगे या कुछ बदलाव करना चाहोगे? चाहेंगे? ठीक है, हम देखेंगे 4 महीने में कितने आप बदल गए। शरीर तो नहीं चाहते हुए भी ओल्ड हो जाता है, 4 मंथ ओल्ड हो जाएगा, पर आत्मा जैसा है वैसा ही न रहे। आज प्रमादी था तो कल के दिन अप्रमादी मिलना चाहिए, आज आलसी था तो कल के दिन आलस छोड़ा हुआ प्राप्त होना चाहिए। इसको कहते हैं धर्म। धर्म में बदलाव लाने के लिए क्या बदलाव लाना पड़ेगा? प्रमाद को छोड़ना पड़ेगा, कुछ आनंद का जीवन जीने का प्रयास करना पड़ेगा, उसका नाम है धर्म। धर्म हमें आनंददायी है, सुखदायी है, शांति दिलाता है, हमको सन्मार्ग प्रदान करता है, हमको निर्वाण की प्राप्ति करा देता है। इसलिए कहा है धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म की यदि हम रक्षा करते हैं, धर्म को अपने जीवन में स्थान देते हैं, उसको संभालने लगते हैं, तो धर्म भी हमारे भविष्य जीवन को उज्जवल रखता है, हमारी रक्षा करता है। भविष्य में वह हमारे लिए दुख आने नहीं देता, अशांति आने नहीं देता, आनंद दिलाने वाला कारण बन जाता है। ऐसी धर्म के पास शक्ति है, सामर्थ्य है। इस धर्म को अपने जीवन में बहुत अच्छी तरह से स्थान देकर के उसको संभालना है। धर्म को आज यदि हम संभाल लेते हैं तो धर्म भी अनंत काल तक हमको संभालता रहता है। सिद्ध परमेष्टि उसी धर्म को संभाल करके सिद्धालय में रह रहे हैं। किस धर्म को संभाल करके? जो सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है, उसी धर्म को संभालते हुए वो अनंत काल तक रह रहे हैं। आज वो सिद्ध परमेष्टि वो दुखी नहीं है। महावीर भगवान मोक्ष गए, पार्श्वनाथ भगवान मोक्ष गए, आदिनाथ से लेकर के सभी 24 तीर्थंकर मोक्ष गए, सिद्ध भगवान बन गए। उनके पास क्या है? धर्म के अलावा कुछ भी नहीं, संसार का एक भी कार्य नहीं। अभी अपन कितने पीछे हैं, कितने पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। हमारी भूमिका बहुत नीचे की है। सिद्ध परमेष्टि कहाँ और हम कहाँ? उनके पास जितने धर्म होना चाहिए वो सारे के सारे धर्म उनके पास हैं। सम्यक तो धर्म उनके पास है, चारित्र धर्म, संयम धर्म, 8 प्रकार के कर्म जो बंधे हुए थे वो कर्म आत्मा के धर्म को नष्ट कर रहे थे। कोई सम्यक को नष्ट कर रहा था, कोई चारित्र को नष्ट कर रहा था, कोई और गुणों को नष्ट कर रहा था। ये गुणनाशक जो कर्म थे उन कर्मों को उन्होंने नष्ट कर दिया। कितने कर्मों को नष्ट किया? 8 कर्म। कौन कौन से? ज्ञानावरण, नाम मालूम है ना, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, इतने सारे कर्म हैं। इन कर्मों को नष्ट करके सिद्ध भगवान ने संपूर्ण धर्म के उपलब्धि को कर लिया। उनके पास अधर्म नाम का कोई चीज ही नहीं है। जो उनके गुण जो होते हैं वही धर्म है। सिद्ध परमेष्टि के 8 गुण 8 धर्म, और ये 8 गुण जो प्राप्त हो गए हैं 8 कर्मों के नाश से प्राप्त हो गए। 8 कर्म धर्म के नाशक, और 8 कर्म के प्रभाव से जो गुण है वो दोष में कन्वर्ट होते हैं, वो दोष अधर्म है। समझ रहे हैं ना? ध्यान से सुनो, 8 कर्म के प्रभाव से हमारे गुण दोष में बदल जाते हैं। वो दोष हो गए 8 प्रकार के अधर्म है ये, और इन्हीं दोषों को नष्ट करने के लिए कर्मों को नाश करना पड़ता है। जिसके निमित्त से दोष उत्पन्न हो रहे हैं वो कर्म ही नष्ट हो गए तो दोष नष्ट होंगे, और दोष अधर्म है। कर्म कर्म है, अचेतन तत्व है, पुद्गल तत्व है, उसी की वजह से दोष आए हुए हैं। और दोष कौन कर रहा है? आत्मा ही दोष कर रहा है। कर्मों को कौन बांध रहा है? आत्मा ही कर्मों को बांधता है। उस कर्म का फल क्या है? तो आत्मा के गुण तो नष्ट होते हैं, दोष उत्पन्न होते हैं, उन दोषों को भोगने वाला कौन? हाँ, दोषों की अनुभूति करने वाला भी आत्मा है। और दोषों को नष्ट कौन करेगा? आत्मा करेगा। कर्मों को नष्ट कौन करेगा? आत्मा ही करेगा। ये धर्म का कार्य है, सबसे बड़ा धर्म का कार्य। हम कुछ भी करें, देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, कुछ भी करें, किस उद्देश्य से करें? हाँ, अधर्म के नाश के लिए और कर्मों के नाश के लिए। कर्म नष्ट होंगे तो दोष उत्पन्न नहीं होंगे, परंतु कर्म कब नष्ट होंगे? जब धर्म को धारण करेंगे। परंतु धर्म को कब धारण करेंगे हम? जब दोषों को दूर करने का प्रयास करेंगे। दोषों को दूर करने से कर्मों का आवागमन रुकता है और गुण की प्राप्ति होती है। तो दोष दूर कौन करेगा? आत्मा करेगा। क्या भगवान से कहे, हे भगवान आपके पास तो आ गया, मेरे दोषों को दूर करो, वो करेंगे क्या? नहीं करेंगे। भगवान हमारे दोषों को दूर नहीं करते। भगवान के पास जाकर उनके गुणों का चिंतन करके, वो निर्दोष हैं, उनकी निर्दोषता की तरह हम भी निर्दोष बन सकते हैं, ये कहकर भगवान के माध्यम से भगवान को निमित्त बना करके उनको देखते देखते हमारे दोषों को हमको दूर करना है। हमको बदलना है क्या? भगवान को हमको बदलो, हमको बदल दो, थोड़ा याचना करना है। हमको बदलना है भगवान के सामने खड़े होकर, भगवान का चिंतन करते हुए हमको बदलना है। देखो, एक उदाहरण दे दूं, आप लोगों को झट से समझ में आ जाएगा। आप सभी के घर में एक वस्तु अवश्य होती है, वो वस्तु न हो ऐसा कोई घर ही नहीं है। कौन सी वस्तु मालूम है? टीवी नहीं है। टीवी किसी घर में नहीं भी हो सकती है, लेकिन एक वस्तु ऐसी है जो व्यक्ति अपने लिए ही रखता है, और वह कंबाइंड भी हो सकता है, और जा जा करके उसके सामने खड़े हो जाते हैं। समझ में आ गया कौन सी वस्तु? आईना। वो आईना कहाँ लगाते हैं? दीवार पर। वो आईना भी कहते हैं, मेरे सामने कोई आए ना, मुझे क्यों देखते हैं समझ में नहीं आता, मेरे सामने कोई भी आए ना, वो क्यों आते हैं ऐसा कहता है दर्पण, मेरे सामने कोई ना आए, आए ना। लेकिन हम आईने के सामने क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं? अपने चेहरे को सुधारने के लिए, अपने बालों को सुधारने के लिए। मतलब आपके, आपका चेहरा गलत है, आपके बाल गलत हैं, और उनको सुधारने के लिए आप आईने के पास जाते हैं। जाते कि नहीं जाते? आप अपने आप को क्यों नहीं संभाल पाते? आईने की क्या जरूरत है? ऐसा ऐसा करो, मुंह धो लो और बाल जरा ऐसा ऐसा कर लो, आईने के सामने क्यों जाते हैं? महाराज, आईने के सामने हम इसलिए जाते हैं, और कहीं कुछ रह गया हो, लोग ना हंसे हमारे चेहरे को देख करके, इसलिए हम ठीक ठाक हैं क्या नहीं, ये निर्णय लेने के लिए वहाँ हम जाते हैं आईने के सामने। हम वस्तुतः ठीक हैं क्या नहीं, देखने के लिए जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, आईने के सामने जाते भी हैं, ठीक सब कुछ ठीक वहीं कर लेते हैं, चेहरे को भी और बालों को भी, फिर विश्वास के साथ, निर्णय के साथ लौटते हैं कि हम ठीक हैं। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति करते हैं कि नहीं? घर में आईने के सामने जाने का उद्देश्य हमारा क्या है, तो यही है ना, कि हम अपने को सुधारने के लिए जाते हैं, तो भगवान के सामने आप क्यों जाते हैं? क्या उद्देश्य रहता है कि आप जाते हैं भगवान से कुछ मांगने के लिए? भोग वैभव संपत्ति पुत्र धन इत्यादि नहीं है और उसको देव कहने के लिए? ये पुत्र धन संपत्ति धन आदि ये सभी भोग सामग्री है क्या, मोक्ष की सामग्री है? तो इसको छोड़ा जाता है कि इसको ग्रहण किया जाता है? और ये मांगने से मिलते हैं कि ऑटोमेटिक कर्म के निमित्त से मिलते हैं, पुण्य कर्म के उदय से मिलते हैं क्या, पाप कर्म के उदय से? पाप कर्म के उदय से ये भोगोभोग सामग्री मिलती है क्या? क्या पता है, हमको विश्वास ही नहीं होता ऐसा समझते हैं क्या? भगवान ने तो कहा है, देखो भगवान की वाणी पर विश्वास है, विश्वास है कि नहीं? तो भगवान कहते हैं विश्वास रखो, ये सभी पुण्य पाप से ही मिलते हैं, ऐसा ठोस विश्वास रखो, संशय मत करो। ये कहा है क्या नहीं? कर्म सिद्धांत को मानो, ये कहा है क्या नहीं? आप लोग कहाँ मानते हैं कर्म सिद्धांत को? कभी किसी भगवान के पास जाते हैं, कभी किसी क्षेत्र में जाते हैं, कहाँ? औरंगाबाद क्यों गए थे? तो बस ऐसा ही, घर में कोई अभाव था इसलिए गए थे ना। तो क्या अभाव था? भौतिक सुख ही है ना। तो भौतिक सुख के लिए किसी भगवान के पास जाएंगे, किसी देव आदि के पास जाएंगे, तो वो क्या हमारे लिए अपने भौतिक सुख को दे करके हमको सुखी बना सकते हैं? भौतिक सुख पुण्य कर्म के उदय से मिलते हैं कि कोई देव देने की क्षमता रखता है? अगर कोई देव भौतिक सुख को देने की क्षमता रखता है ये कहेंगे, समर्थ है ये कहेंगे, समर्थ भी समर्थ नहीं है ध्यान रखना कोई समर्थ नहीं, केवली भगवान अरहंत भगवान भी समर्थ नहीं है आपको सुख देने के लिए, कोई मंत्र तंत्र भी समर्थ नहीं है आपको भौतिक सुख प्रदान करने के लिए। भौतिक सुख यद्यपि पदार्थ वो पर पदार्थ है, उसका लाभ जो हमको होता है वह अपने कर्म के अधीनता से ही होता है। जिस समय कोई व्यक्ति आपको ला करके कोई वस्तु दे दिया और आपको वो वस्तु बहुत समय से प्रतीक्षित थे वो वस्तु नहीं मिल रही थी और ला करके आपको दे दिया, तो व्यक्ति ने दिया कहना चाहिए कि पुण्य के कर्म के कारण से हमारे पुण्य ने उस व्यक्ति को आकर्षित करके वस्तु दिला दिया, ऐसा कहना चाहिए। पुण्य के कारण से, पुण्य का अगर उदय हो तो व्यक्ति भी निमित्त बनता है और वस्तु भी व्यक्ति के माध्यम से हम तक आ जाती है। सिर्फ अपने को इतना करना पड़ता है, वस्तु आने पर हमको लेने का पुरुषार्थ करना पड़ता है। आप लेना नहीं चाहते हैं तो वस्तु भी आपको जबरदस्ती नहीं करती कि मुझे ग्रहण करो। पुण्य ये नहीं कहता है कि इसके फल को भोगो। आप पुण्य के फल को भोगना नहीं चाहते हैं तो पुण्य भी फल नहीं देता। ये वस्तुतः ऐसी बात है, जैसे भूख लगी, आप दुखी हैं, वेदना हो रही है, खाना मिलना चाहिए, तो आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि यहीं बैठे बैठे थाली आ जाएगा। आप पुरुषार्थ कर लिया, क्या कर लिया, रसोई घर तक गए, वहाँ बैठे और परोसने वाले भी आ गए, और पाप कर्म का उदय होता है ना तो परोसने वाले भी खाली, रसोई घर में कोई नहीं है, वहाँ आप जाकर के बैठेंगे तो भोजन नहीं मिलने वाला है, वहाँ बना करके रखा है कोई देने वाला है, तो आपके पुण्य के उदय से है वो सब। वहाँ बैठ गए और ला करके आपको थाली में परोस दिया, लेकिन जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। उस दिन रोटी नहीं मिली, सब्जियां और चावल खा करके उठ गए आप, तो रोटी क्यों नहीं मिली? रोटी बनाने वालों ने क्यों नहीं बनाया, ऐसा गुस्सा करोगे? वहाँ आटा ही नहीं था, धान नहीं था, गेहूँ नहीं था, तो वो कैसे बनाएंगे? तो आटा नहीं, गेहूँ नहीं, धान नहीं था, तो फिर ये आपका पाप का फल है कि पुण्य का फल? पाप का फल। तो ये बात है, पाप का फल है, इसलिए उस दिन रोटी नहीं मिली, चावल खा करके उठ गए। कोई भी वस्तु हमारे लिए मिलती है तो समझना चाहिए पुण्य का फल है, ऐसा नहीं समझना कि व्यक्ति दे रहा है, बस यही देता है, यही देता है। नहीं देता है व्यक्ति, नहीं देता है। आपके पुण्य के वजह से वो देने वाला व्यक्ति भी पुण्य का फल है, और जो आप खाने वाले हैं वो वस्तु भी पुण्य का फल है। ये दोनों पुण्य के फल से आ रहे हैं, कोई भी देता लेता नहीं है। ये बात अच्छी तरह से समझना है अपने को, समझेंगे ना? सुन रहे हैं इधर क्या? दूसरी तरफ मन है, यहीं पर हम फेल हो रहे हैं। हम क्या सोचते हैं, ये देता है, वो देता है, वहां जाने से ठीक हो जाता है, ऐसा समझते हैं। वो पुण्य के बिना होगा क्या? सोचो, आप कहीं भी होकर के आ गए, औरंगाबाद गए, कभी शिरडी गए, कभी डिग्रज गए, कहीं भी गए, मान लो वहां होकर के आए, होकर के आने मात्र से क्या पुण्य का फल मिलता है? कई बार नहीं भी मिलता है, और कई बार मिल भी जाता है। लेकिन डिग्रज के बाबा ने दिया क्या? क्या समझ है आपकी, क्या धारणा है? इसी धारणा को जरा ठीक करना है। इसी के भीतर अंधविश्वास छिपा हुआ है हमारा, अंधविश्वास इसी में है। महावीर भगवान ने कहीं अपने उपदेश में ये कहा था क्या, जब भी कष्ट आएगा डिग्रज जाके आना तो ठीक हो जाएगा। वहां पर नरियल बंदे हैं, आते समय देखा हमने, वहां चारों तरफ नरियल बंदे हैं। क्या हमारे सुख दुख भगवान के ऊपर डिपेंड है, कर्म के ऊपर डिपेंड है कि भगवान के ऊपर? तो अपन यदि कर्मों को नष्ट करके पुण्य कर्म को बढ़ाएंगे, ये तत्व समझ करके इससे इस रास्ते से चलेंगे और पूर्व के उस अंधविश्वास को दूर करेंगे। डिग्रज जाओ नहीं जाओ ये नहीं कह रहा हूं, डिग्रज तो जाओ, लेकिन ये विश्वास करके मत जाओ कि भगवान मुझे देंगे, ये अंधविश्वास है। भगवान नहीं देते, भगवान के पास जा करके भक्ति करो, भक्ति के लिए जाओ, आराधना करो, आराधना के लिए जाओ, अपने परिणामों को उज्जवल बनाओ, उज्जवल बनाने के लिए जाओ। इससे क्या होगा, उज्जवल बनाने से पुण्य का बंध होगा, पूर्व पुण्य में वृद्धि होगी, पूर्व पाप घट जाएगा, नया पाप कर्म आने से रुक जाएगा। देखो चार काम होते हैं डिग्रज जाने से, चार काम, ये चार काम करने के लिए जाओ। मैं केवल निर्दोष निस्वार्थ भक्ति करने के लिए जाऊंगा, कहीं भी जाओ लेकिन निस्वार्थ भक्ति के लिए जाओ। निस्वार्थ भक्ति किस उद्देश्य से करना, चार के उद्देश्य से। हमारा पुण्य बढ़ेगा, ऑटोमेटिक बढ़ेगा, पर पुण्य भी बढ़ाना है इस उद्देश्य से मत जाओ, फिर वो भी एक विकल्प हो जाएगा। नहीं, क्या करना, अपने विशुद्धि को बढ़ाना है, आनंद लेना है, पूजन से भक्ति से आनंद लेना है, आनंद के उद्देश्य से जाना है, तो जा सकते आप जाओ। तो उस आनंद के काल में, विशुद्धि के काल में क्या होगा, पुण्य ऑटोमेटिक नहीं चाहते हुए भी ऑटोमेटिक ही बढ़ेगा, पुण्य बढ़ेगा, पाप घटेगा, पूर्व का। अब वर्तमान का पुण्य आएगा, पाप रुकेगा। इतना काम अगर हो गया तो क्या आपको भौतिक सुख नहीं मिलेंगे? मिलेंगे, क्यों चिंता करते, भौतिक सुख 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 सूख गए। सुख सुख कहते कहते सूख गए, चिंतन ही नहीं किया। भगवान के जो तत्व हैं उनका चिंतन करने से जीवन कितना उज्जवल होता है, यही करना है। विश्वास नहीं रखना, अंधविश्वास नहीं रखना कभी भी। कोई भी देवता देता नहीं, क्या देता है? जब इतने तीन लोक के नाथ इतने बड़े भगवान नहीं दे सकते, तो जिनके पास शक्ति नहीं, जो स्वयं ही सुख में और दुख में रहते हैं, जिनका जिनके पास शरीर है, कर्मों का फल भोग रहा है, वो देव आदि हमको सुख दे सकते हैं क्या? क्या विश्वास है आपका? नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। ऐसा विश्वास करोगे कि दे सकते हैं कि अगर भागोगे है? नहीं दे सकते, ये विश्वास करो और इसको विकसित करो। अगर ये विश्वास हो गया ना, तो सम्यक तो धर्म जीवन में आ गया। चिंतन करोगे इस बात को? हाँ, खूब चिंतन कर लेना, एक घंटा आराम से बैठ लेना, आज की जो सुना हुआ प्रवचन है ना, खूब चिंतन करना। अगर ये चिंतन हो गया और सही निर्णय पर आप आ गए, तो सम्यक दर्शन होने में देर नहीं लग सकती। समय हो गया है, आकुलता बढ़ गई आप लोगों को, मन उधर गया क्या? नहीं गया, अवश्य गया है। अब प्रवचन में कहाँ लग सकता है वो। टाइम टू टाइम काम करता है वो भी। चलो, जिनवानी बोलेंगे।